सड़क पे यहाँ से आगे जो बाजार है ना, वहाँ खड़ी हो जाती हूँ सड़क पे, और आप क्या बन जाना, वो वेश्या के दलाली करने वाला व्यक्ति होता है ना, और आप है ना मेरा मूल्य लगा के मेरी दलाली कर देना। पिपा जी कहते ये आइडिया ठीक है, अगर अपना तन बेच दिया जाए और अगर वो तन से कुछ पैसा मिले और उससे साधु की सेवा हो जाए तो बात बुरी नहीं है कि शरीर की जो आवश्यकता क्या है, भगवान की सेवा होनी चाहिए, साधु की सेवा होनी चाहिए। पिपा जी भी तैयार हो गए, अब बाजार में खड़े हो गए। सीता जी परम सुंदरी दिख रही है और उसने श्रृंगार भी किया हुआ है, और पीपा जी ने वो जो दलाल होता है ना वैसे वस्त्र पहन लिए और उनकी बोली लगवा रहे। जो रास्ते से आता जाता देखता है इनकी सुंदरता को देख के बड़ा आकर्षित हो जाता है। उतने में क्या हुआ, कुछ द्वारिका से यात्री आए थे, उन्होंने पीपा जी को पहचान लिया और जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। कहते पीपा जी महाराज आप यहां पर, फिर देखा अरे सीता जी है, इनको प्रणाम किया। आप सब लोग पूछते तुम इनको जानते हो, कहते हाँ ये वो भक्त पीपा जी है जिनको द्वारकाधीश ने दर्शन दिए थे। ओ फिर तो सब लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ और उनको दंडवत प्रणाम करने लगे और ला ला के बहुत सारा धन देने लगे। कहते महाराज आप ये काम क्यों कर रहे थे, कहते भाई ये शरीर का तो कोई काम नहीं है, शरीर तो व्यर्थ जाता है, पशु का शरीर तो फिर भी काम आ जाता है, हाथी के दांत गहनों में काम आ जाते हैं, शेर की खाल काम आ जाती है, हिरण के खाल पहनने में काम आ जाती है, भैंसे की खाल पानी ढोने में काम आ जाती है, हर एक जीव का कहीं ना कहीं कोई मूल्य मिल जाता है मरने के बाद भी। ये तो जो शरीर है ना इसका तो मर के भी कोई मूल्य नहीं मिलता, सोचा जीवित अवस्था में कोई मिल जाए। और पीपा जी कहते हैं उसमें भी पुरुष है ना उसका तो वो मूल्य भी नहीं है। कहते हैं मेरी धर्म पत्नी वो कितनी भाग्यशाली है, उसको तो खरीद भी लेगा, मेरे को तो कौन खरीदेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि ये जो मेरी स्त्री है ना वो मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली है, कम से कम अपने शरीर को बेच के साधु सेवा तो कर सकती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। पीपा जी महाराज की समझ कितनी ऊंची है। सब लोगों ने प्रचुर मात्रा में उनको धन दिया, खाद्य पदार्थ दिए। कहते महाराज आप आशीर्वाद दो, आप ये सब काम मत करो, संत लोग ऐसा करे अच्छा नहीं लगता। पीपा जी कहते भगवान ने तो हमको सेवा भी नहीं करने दी, सोचे थे कम से कम एक सेवा भी कर ले, वो भी नहीं हो पाई। फिर इतना सारा धन आया, सोचे हम क्या करेंगे इसका, वो सारा का सारा धन उन्होंने चिदर जी के घर पे भिजवा दिया। कहते वो साधुओं की सेवा करते हम तो कुछ करते नहीं, सब धन उनके वहां पहुंचवा दो। अब चिदर जी के घर पे बहुत सारा धन आ गया, अब उनको नींद ना आए, अर्थ अनर्थ का कारण बन सकता है, इसलिए चिदर जी सोच में पड़ गए। ये तो बड़ी टेंशन की बात है, भक्ति चली जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा, माया लग जाएगी, बस इसी बात के टेंशन में उन्होंने क्या किया, 3 दिन के भीतर भीतर में जितना भी धन था ना साधुओं को भंडारा करा के, दक्षिणा दे के, कर करा के पूरा कर दिया। तब बड़ी शांति का अनुभव किया, आप ठीक है। तो ऐसे महान वैष्णव लोग ऐसे धन के प्रति अंधी अभिलाषाएं नहीं रखते, वो लोग तो अपना विशेष जीवन जो है ना वो भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में लगाते हैं। अभी क्या हुआ कि पिपाजी महाराज ने सोचा, अभी तो सब लोग हमको यहाँ पहचान गए, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो लोग भजन नहीं करने देंगे। कहते ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चिदर जी वहाँ से चिदर जी से आज्ञा लेके पिपाजी महाराज वहाँ से टोंडे गांव को चले गए और गांव के बाहर जाकर बैठे थे। वहीं पर उन्होंने विश्राम किया, पड़ाव डाला, सरोवर में स्नान करने के लिए गए। तो सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा सोने का मटका रखा हुआ है मोहरों का। उन्होंने देखा और तुरंत भागकर घर आ गए और आके धर्मपत्नी को कहते कि आज भगवान मुझे माया में फंसाने वाले थे लेकिन मैं बचकर आ गया। कहते क्या हुआ? कहते मैं स्नान करने के लिए गया तो बड़ा सोने का भरा हुआ, सोना मोहरों का ऐसा मटका पड़ा हुआ था, मैं भागकर आ गया। धर्मपत्नी कहती बहुत अच्छा किया, कल से वहां सरोवर में स्नान नहीं करने जाना, किसी दूसरी जगह स्नान करने जाना। और ये बातें कर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति ने इनकी बातें सुन ली। वो चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने सुन ली। इसने कहा इतना बड़ा सोने का मटका छोड़कर आ गई है, कैसे व्यक्ति है वो? गया वहां पर, जाके लोभवश उसने लेना चाह, देखा तो जहरीले जहरीले सांप भरे पड़े उसमें। इसने देखा, कहते मेरे साथ मजाक किया उन्होंने, मेरे को मारना चाहते, सांप भरे पड़े और बोलते कि सोना है। अब इन्हीं को ही दिखाता हूं। वो मटके का मुंह बंद किया और मटका उठा के ले आया और चिदर जी के घर पे लाके रख दिया दरवाजे पे। जब उन्होंने दरवाजा खोला, देखा तो वो मटका वहीं पड़ा हुआ है। अब सोचे भगवान पीछा नहीं छोड़ते, हाँ भगवान जबरदस्ती पकड़ा रहे, ले इसको लेना ही पड़ेगा, ले। अब क्या हुआ, घर के भीतर में ले गए, 720 सोना मोहरे निकली और एक एक मोहर 5-5 तोले की। इतना धन भगवान ने भेज दिया उनको। अब सोचे करे क्या इसका, कहते भगवान ने दिया है तो भगवान को वापस कैसे पहुंचाया जाए? कहते भगवान को पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है साधु संतों को दे दिया जाए, उनका भंडारा कर दिया जाए। अब वो जिस जगह पर टोंडे में रुके थे ना, वहां का राजा था सूर्य सेनमल। अब उसको किसी ने समाचार दिया कि अपने नगर के बाहर एक महात्मा जी आए और भंडारे पे भंडारे लगाए जा रहे, अनेक अनेक साधु संत आते और खाते रहते वहां पर, बड़े वैरागी है। राजा सूर्यसेनमल ने देखा कि वो ऐसे साधु को तो फिर मिलना चाहिए। आए पिपाजी महाराज जी के पास, पिपाजी महाराज ने सब धन धाना खिला पिला के खत्म कर दिया था और जैसे थे वैसे हो गए वापस। लेकिन उनकी ख्याति फैल गई। राजा आए, राजा ने आके दंडवत प्रणाम किया, कहते महाराज मेरे पर दया करो, हाँ मुझे भी भक्ति का उपदेश दीजिए। तो पिपाजी महाराज कहते कि तुम क्या चाहते हो? कहते महाराज बस मैं हरि भजन करना चाहता हूँ, सब चीजें छोड़ना चाहता हूँ। तो पिपाजी महाराज ने उसकी परीक्षा ली, कहते भक्ति करनी है तो अपनी सारी रानियों को सारी संपत्ति को लेकर यहाँ आ जा, मेरी शरण में आ जा, सब मुझे अर्पण कर दे, फिर मैं तेरे को भक्ति का ज्ञान दूंगा। राजा गया, सारी रानियों को बुला लाया, सारी संपत्ति उठा के ले आया, लाके पिपाजी के चरणों में धर दी। कहते महाराज ये आप संपत्ति रखिए, ये मेरी सारी रानियां भी रखिए, मुझे भी रखिए। पिपाजी ने देखा इसमें पूरा वैराग्य है, बोला था तो करके भी दिखाया। कहते अभी काम करो, ये सारा वापस ले जाओ और आज से तुम्हारा राज्य मेरा हो गया। हाँ, और इसको सेवक के तौर पर चलाना, और जो भी साधु संत है उसकी खूब सेवा करना, रानियों से भी सेवा कराना। रानियों को बोला पर्दे में नहीं रहना। पर्दे में नहीं रहने का तात्पर्य है कि साधु संतों से दुराव नहीं करना, उनकी सेवा करना पूरा मन लगाकर। अब राजा को उन्होंने उपदेश दे दिया, अब राजा तो महल में रहे ऐसे जैसे जंगल में रहे, जो मिले उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करे, बड़ा विनम्रता का जीवन जिए। अब राजा पूरा बदल गया। तो राजा के कुछ भाई थे ना, वो बोले टेंशन में आ गए, राजा अगर ऐसा जिएगा तो उसका प्रभाव तो खत्म हो जाएगा सारा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो उनके भाइयों ने मन में बड़ा रोष किया कि पिपाजी महाराज के कारण हमारा सारा परिवार है ना, वो वैराग्य की ओर चला गया। ये पिपाजी महाराज को ठीक करना पड़ेगा, हाँ, ये सबको बिगाड़ रहे यहाँ पर। जो राजा जिसको देखता है उसको प्रणाम करता है, राजा थोड़ी ऐसा करता है, राजा का तो अपना वर्चस्व होना चाहिए। तो उसके राज्य में कुछ व्यापारी आए बैल खरीदने के लिए। इसने सोचा पिपाजी महाराज जी को भी सीधा करते हैं। वो व्यापारियों को उन भाइयों ने बुलाया और कहा कि आपको बैल खरीदने ना, यहाँ हमारे राज्य में पिपाजी रहते हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया बैल है, लेकिन आपको देंगे नहीं, मना करेंगे कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उत्तम से उत्तम बैल है, आप बस रुपयों की थैली वहां धर देना, वो मजबूर होकर फिर आपको बैल दे देंगे। व्यापारी ने सोचा ये तो अच्छा है, आए कहते महाराज हम बैल खरीदना चाहते आपसे। कहते भाई हमारे पास तो कोई बैल नहीं है। नहीं नहीं हमको समाचार मिला है आपके पास उत्तम से उत्तम बैल है, और ये भी समाचार मिला है कि पहले आप मना ही करोगे, लेकिन ये रुपयों की थैली पकड़ो और धर दी। अब पिपाजी महाराज जी को लगा कि किसी ने हमारे साथ ना थोड़ी चालाकी की है, उनको महसूस हो गया। तो पिपाजी महाराज ने फिर क्या किया, अच्छा आपको बैल ही चाहिए थे ना, आज तो सारे बैल चरने के लिए गए हैं, कल आ जाना आप लोग, कल आपको उत्तम से उत्तम बैल दिला देंगे। व्यापारी बड़े खुश हो गए, कहते अभी कल आएंगे। अभी क्या हुआ, दूसरे दिन व्यापारी आ गया, कहते लाइए जी हमको बैल दीजिए। पिपाजी कहते आइए हम दिखा देते आपको, जो अच्छा लगे ले जाइए। अब संतों की जमात लगी हुई थी, भोजन कर रहे थे, भगवत प्रसाद पा रहे थे। पिपाजी ने कहा देखो ये बैठे लाइन से, जो अच्छा लगता है ले लीजिए। वो कहते मजाक करते हमारे साथ, हाँ? वो थोड़ा गुस्से में आ गए, कहते आपने हमारे साथ मजाक किया, हमने आपके साथ मजाक किया, हमने आपको पहले ही कही थी कि हमारे पास कोई बैल नहीं, आप पैसा जबरदस्ती छोड़ के चले गए, हमने भी मजाक कर दिया। कहते आप इनको ठीक से नहीं जानते। कहते भागवत के पहले स्कंद में परीक्षित महाराज जी ने जो धर्म होता है ना वो बैल के रूप में होता है, तो ये जो साधु संत है ना वही धर्म का प्रतीक है, वो तो धर्म फैलाते हैं, और साधु संत भी धर्म को मानते हैं और बैल धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए बैल को वृषभ कहते हैं। और साधु संत भी धर्म को फैलाते हैं, धर्म को धारण करके रखते हैं जैसा बैल करता है, तो ये भी बैल हुए कि नहीं हुए, ये धर्म रूपी बैल है जिसके पास धर्म रहता है हमेशा। और बैल इधर उधर चरते हैं, इसी प्रकार साधु भी इधर उधर घूमते हैं और संसार में लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, इसलिए आपको जो अच्छे लगे ले जाइए। वो सब पिपाजी महाराज जी के चरणों में गिर गए, कहते महाराज आज समझ में आई आपकी लीला के आप कितने महान हैं, कहते आपको जो हमने धन दिया था ना उसको लगाइए साधुओं की सेवा में, और अभी हमको आशीर्वाद दीजिए, हम भी आगे धर्म का ही पालन करें। पिपाजी महाराज जी ने वो जो भंडारा किया था ना उसी के पैसे से किया था, क्योंकि आज पैसा है उन्होंने कल भंडारा कर दिया था उसका, उन्होंने पहले साधुओं के सेवा में लगा दिया था। किसी साधु के पास पैसा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको सेवा में लगा देना, वो पहले लगा देता है, या उसके पास लगाने की पहले व्यवस्था रखी होती है, वो राह देखनी होती बस कब आए, जगह तो पहले नक्की होती है लगाने के लिए। तो इस प्रकार संत संग्रह कम करते, करीब करीब ना ही करते संग्रह, और जो आता है अपने तन को भी मन को भी अपनी आत्मा को भी और जो धन भी आता है उसको भी, उनका तो एक ही काम होता है कि जो भी कुछ हो उसको भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो जो भी पदार्थ है कि व्यक्ति है सब अपने आप में पवित्र हो जाए। इसलिए उनका तो एक ही काम होता है कि यहाँ संसार में जो भी कुछ मिला, या अपना शरीर भी है या धन भी है, उठा के भगवान के पास, जो भी आया उठा के भगवान के पास, क्योंकि वो एक ही बात जानते हैं कि भगवान के चरणों तक कोई चीज पहुंच जाएगी ना तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। इसलिए वो हर चीज को वहां पहुंचाने में शीघ्रता करते हैं। तो वहीं पर टोंडे गांव में रहा करते थे। अभी राजा सूर्यसेन मल जी के महल में एक विडंबना आ गई थी, एक प्रॉब्लम हुआ था जो राजा से उसकी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। उन्होंने पिपाजी महाराज जी को बुलाया, आप आइएगा। पिपाजी महाराज वहाँ चले गए। यहाँ पर घर पे सीता सहचरी जी अकेली है और साधु संत आ गए। आज साधु संतों को भोजन कराना है लेकिन पास में कुछ भी नहीं है। इन्होंने सोचा साधु द्वार से भूखे जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आज मौका मिला है वापस अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाने का। पिछली बार प्रयास किया था, प्रभु ने लगने नहीं दिया, आज फिर मौका लगाए। वो एक बनिए के पास चली गई और जाके कहा कि हमारे घर पे संत आए हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करनी है, तो आप हमको कुछ द्रव्य देंगे। कहते आप जितना मर्जी द्रव्य ले जाइए, लेकिन बस हमारी इच्छाओं को पूरा कर दीजिएगा, रात को आइएगा आप। उन्होंने हामी भर दी, ठीक है हमको मंजूर है, शरीर के बदले में साधु सेवा तो हो जाएगी। वो बहुत सारा सामान लेके आई घर पे, बनाया, साधुओं को भोजन करा रहे। पिपाजी महाराज वहाँ महल में गए थे, वहाँ क्या समस्या हो गई थी कि एक की पत्नी थी, हूबहू शक्ल वाले उसके दो पति, एक कहता है मेरी घरवाली है, दूसरा कहता है मेरी घरवाली है। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राजा के पास गए, अब दोनों एक ही बात बता रहे हैं मेरी घरवाली, वो कहता मेरी घरवाली है, दोनों पहचान भी बताए, दोनों जो जो प्रमाण देना एक जैसे ही निकले। अब राजा बड़ा समस्या में आ गया कि दोनों सारी बातें सच सच बताए जा रहे, अब किसकी घरवाली है ये। पिपाजी महाराज जी को बुलाया, कहते महाराज आप आइए कुछ समस्या का समाधान कीजिए। पीपा जी आए, कहते एक बोतल मंगाओ, बोतल मंगाई, कहते घरवाली उसी को मिलेगी जो बोतल के अंदर प्रवेश कर सकता हो, अन्यथा नहीं मिलेगी। जो उसका सच्चा पति था ना वो तो रोने लग पड़ा, महाराज आप ऐसी शर्त रखेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, हम बोतल में कैसे जा सकते हैं, आपने ऐसी शर्त रखी हमारे तो घरवाली हाथ से चली जाएगी। वो बेचारा रोने धोने लग पड़ा। उतने में दूसरा था ना, वो भूत था, उसका रूप बनाकर भोग करने आया था, वो झट बोतल में प्रवेश कर गया। पीपा जी को समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले बोतल मंगा कर रखी थी, और जैसे ही बोतल में गया ना उन्होंने मंत्र का माध्यम से उसका मुख बंद कर दिया और जमीन में मंत्र उच्चारण से कील लगा के उसको वहीं बांध दिया। और राजा देखने लगे कर क्या रहे, कहते भूत था ये, तुम लोग रास्ते से जा रहे होंगे तो इसने देखा तो इसने इसके जैसा हूबहू रूप बना लिया इसका भोग करने के लिए। तो पिपाजी महाराज जी की दया से उस समस्या का समाधान हो गया। अब राजा की श्रद्धा और बढ़ गई गुरुजी के चरणों में। अब पिपाजी महाराज घर पे आए तो देखा कि बहुत सारे साधु संत भोजन प्रसाद लेकर जा रहे। धर्म पत्नी को पूछा, इतने सारे संत आए तो व्यवस्था कैसे हुई? धर्म पत्नी ने कहा कि व्यवस्था तो ऐसे हुई कि हमारे पास तो कोई था नहीं पदार्थ, तो हमने जाके एक बनिए को कहा था, तो बनिए ने हमारे शरीर के बदले में ये धन दिया है। पिपाजी महाराज फिर भावुक हो गए, आज फिर तुम्हारा शरीर किसी काम में आ गया, हमारा तो वो भी काम में नहीं आता, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस शरीर के बदले में साधु भोजन करके जाए, इससे क्या अच्छी बात हो सकती है? संतों की समझ अलग है, सामान्य व्यक्ति की समझ अलग है। सामान्य व्यक्ति इस बात को कभी नहीं समझ सकता। तुमने तो कहते संसार के लोकोत्तर सेवा करके भी अपना जीवन सफल किया और आज आध्यात्मिक सेवा करके भी अपना जीवन सफल किया, तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया। लेकिन मुझे तो अपना जीवन सफल करना है ना, तो मैं तुम्हारी सेवा कर देता हूं। और उस दिन रात को बारिश हो गई, पिपाजी ने कहा तुम एक सुंदर से श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, बारिश हो रही है तो तुम कीचड़ में पैर रखते हुए मत जाओ, हम तुमको कंधे पर बिठा देंगे। अब तुमने साधुओं की सेवा की है तो उसकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। पिपाजी ने अपनी धर्म पत्नी को कंधे पर बिठा दिया और रात को बनिए के घर गए, उनको वहां द्वार पे उतारा और वो खुद बाहर खड़े हो गए। द्वार खोल के सीता जी जब प्रवेश की अंदर, बनिए ने देखा कि इनके कपड़े भी सूखे, इनके पैर भी सूखे, कहते आप आए कैसे, आपके पैर वगैरह सब सूखे हैं? कहते हमारे स्वामी जी हमको लेकर आए। वो कहाँ है? कहते वो द्वार पे खड़े। बनिए ने जब सीता जी का रूप देखा ना, तो क्या हुआ, प्रथम बार वो जब द्रव्य लेने आई, एक बार तब दर्शन हुए, द्रव्य लेकर जब उसने भगवान को भोग लगाया तब भी प्रार्थना की कि प्रभु ये जिसने द्रव्य दिया ना उसका उद्धार करना। फिर साधुओं ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। अब सीता जी जब आई तो उसके दर्शन, दिव्य दर्शन करके उसका मन परिवर्तित हुआ। तो बनिए के द्रव्य से भगवान की सेवा, साधुओं की सेवा हो गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बनिए का हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। कहते आपके स्वामी जी बाहर आए, आए भागते हुए, और भागते हुए आए और पिपाजी के चरणों में गिर गए। महाराज मेरे को माफ करो, मैं बड़ा विषय व्यक्ति हूँ, मैंने गलती कर दी, लेकिन आप कितने महान हैं कि आप अपनी धर्म पत्नी को लेकर यहाँ तक आए। अब पिपाजी उल्टा उनका गुणगान कर रहे हैं, ओ भाई तुम कितने महान हो, जिस धन के लिए तो दो सगे भाई आपस में लड़ मरते हैं, वो धन तुमने बिना कुछ कागज पे लिखवाए, बिना कोई ऐसा प्रमाण करवाए, वो धन तुमने ऐसे ही दे दिया साधुओं की सेवा के लिए, कितना उदार व्यक्ति है तू। पिपाजी महाराज उसकी महानता का गुणगान कर रहे। परिणाम स्वरूप में क्या हुआ, बनिए का हृदय ग्लानि से भर गया, आंखों में से आंसू आए, कहते महाराज अब ये जीवन तभी तरेगा जब आप शरण में लेंगे। पिपाजी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको भगवत भक्ति की दीक्षा दी और उसका उद्धार किया। भक्तों की संगति में कोई व्यक्ति आता है ना किसी भी प्रकार से, तो एन केन प्रकारे भी उसका भला हो ही जाता है। पिपाजी महाराज ने तो उत्तम धर्म की नीति को निभाते हुए ये सेवा कर ली, लेकिन जिनको समझ नहीं थी और जो ईर्ष्या करके रहते थे ना, उन्होंने उन ऐसे ब्राह्मणों ने जो पिपाजी से बड़ा द्वेष करते थे, क्योंकि पिपाजी के कारण उनका कर्मकांड राज्य में करीब करीब बंद हो गया था, और बड़ी ईर्ष्या करते थे कि भाई लोग हमको पैर नहीं छूते, हमारी पूजा नहीं करते और उनके पास जाते हैं। उन्होंने राजा को जाके भड़का दिया, महाराज आप पिपाजी को धर्मात्मा मानते हो, अपनी स्त्री बेचने चला था वो, खुद कंधे पर बिठाकर स्त्री को ले गया बनिए के पास, अरे स्त्री की तो रक्षा करनी होती है, उसको ऐसे बेचने थोड़ी निकलते। राजा के कान भर दिए कुसंगति के कारण राजा सूर्यसेन मल की बुद्धि भ्रमित हो गई और उसको लगा रे 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 मैंने किनको गुरु बनाया। अब उसको हृदय में बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इनको गुरु बना के अच्छा काम नहीं किया, देखो इन्होंने क्या कैसा कैसा व्यवहार किया। अब राजा बड़ा घृणा महसूस कर रहा है उनके प्रति। ये बात पिपाजी महाराज जी के समझ में आ गई कि राजा अभी इस प्रकार से गुस्सा महसूस कर रहा है और अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। पिपाजी महाराज राजा को मिलने के लिए आए तो द्वार पर पहरे ने जाके महाराज जी को समाचार दिया कि पिपाजी मिलने आए, तो महाराज ने बोल दिया कि कह दो हम पूजा में बैठे अभी हम नहीं आ सकते। पहरी ने आकर बोल दिया कि अभी महाराज पूजा में बैठे अभी नहीं आ सकते। पिपाजी महाराज क्या कहते, मोची के घर पे बैठकर जूतों को गांठ लगाता है और बोलता है कि मैं हरि की पूजा में बैठा हूं। पिपाजी महाराज जी की ये बात है ना, द्वारपाल ने सुन के जाके बता दी, महाराज वो तो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, मोची के घर पे बैठ के जूतों को गांठ लगाता है और हरि पूजा की बातें करता है। राजा को लगा के भाई पिपाजी कुछ कह रहे हैं, अभी आए वो, उनकी श्रद्धा नहीं थी लेकिन आए। पिपाजी महाराज जी का तो चरित्र कैसा था और उनका उनकी धर्मपत्नी का, तो ऐसे भगवान गीता में कहते ना कि तुम अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दो, बाकी सारे पापों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो सर्वधर्मान परित्यज्य नियम के आधार पर ऐसे महान वैष्णव लोग तो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते, वो तो उसको भी भगवान की संपत्ति मान के उसको भगवान की सेवा में ही लगाने का प्रयास करते हैं। वहां भी सामान्य संसार के नियम, पति पत्नी के नियम, वर्णाश्रम पद्धति के नियम, शरीर धर्म के नियम, ये सब नहीं चलते, वो निकल जाते हैं। ये महान वैष्णव उनसे ऊपर चले जाते हैं और वो लोग तो अपने शरीर को भगवान की पूर्ण संपत्ति मानते हैं, इसलिए उस शरीर से भी अगर भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए तो उससे वो अपने आप को धन्य मानते हैं, वहां पवित्र अपवित्रता नहीं रहती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं है और कुसंगति के कारण राजा के मन में भी ये दोष आ गया था। पिपाजी ने देखा कि राजा के मन के अंदर दोष आ गया है, इसलिए दया करके पिपाजी राजा को शिक्षा देने के लिए आए थे। और पिपाजी महाराज जब आए तो कहते, एक अंधा व्यक्ति जिसको अपने गांव के बारे में पता है वो व्यक्ति तो अपने गांव में जा सकता है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति जिसको किसी दूसरे गांव में जाना हो तो वहां पर उसको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, वो दूसरे गांव अपने आप नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार संसार के व्यक्ति संसार में तो खूब रमते रहेंगे क्योंकि उनको यहाँ का अभ्यास है, लेकिन संसार के व्यक्ति को परमार्थ के रास्ते पर जाना हो, भगवान के रास्ते पर जाना हो, तो वो खुद से नहीं जा सकता। उसके लिए उसको एक योग्य व्यक्ति जिसकी दृष्टि खुली हो, जो देख सकता हो, ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए होती है। तो पिपाजी ने सोचा कि एक बार इनको समझा दिया है, इनके अंदर शुरुआत में पहले बड़ा वैराग्य आ गया था, लेकिन ये वैराग्य हमेशा नहीं चला, क्योंकि एक बार साधन का संकेत कर देने मात्र से सामान्य मनुष्य भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसको तो पग पग पर संभालना पड़ता है। शुरुआत में जब ये हमको मिले तो इनको वैराग्य हो गया और हरि भजन करने लगे, लेकिन पूर्ण शुद्धि नहीं होने के कारण कुसंगति में पड़ गए तो वापिस से जैसे थे वैसे ही बन गए। लेकिन हम गुरु हैं तो गुरु को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इसलिए हम उनको शिक्षा देने आए हैं। और पिपाजी महाराज ने क्या किया, पिपाजी महाराज ने आके उनको समझाया कि एक बार के साधन शिक्षा से तुम नहीं पहुंच सकते प्रभु के घर, गुरु का काम है कि गुरु को तो बार बार व्यक्ति को भक्ति मार्ग में लगाना पड़ता है। और गुरु द्वार पर खड़ा हो और शिष्य हरि भक्ति की सेवा करने का, हरि पूजा सेवा करने का स्वांग करे, जिस प्रकार काकभूषण जी बैठे हुए उज्जैन में भोलेनाथ जी के मंदिर के सामने और भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे और गुरु जी आए तो कहते गुरु जी का आए तो गुरु जी के लिए क्यों खड़ा होना, हम तो प्रभु सेवा कर रहे। तो गुरु जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन भोलेनाथ जी ने श्राप दे दिया, कैसा अजगर की तरह पड़ा हुआ है, गुरु आए तो भी उठता नहीं है, अजगर बना दिया उनको। फिर अनेक अनेक योनि में भ्रमण करने के बाद कौए के शरीर में आए। तो इस प्रकार गुरु द्वार पर खड़ा हो और कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं तो कहते वो व्यक्ति मूर्ख है। अरे उसको उस समय प्रभु की सेवा का वहीं पर जहां सेवा चल रही है उसी को तुरंत छोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करने जाना चाहिए। ये शिव जी ने स्वयं बताया, कहते तुम्हारा गुरु चरणों में अभाव है तो तुम क्या भक्ति प्राप्त करोगे। तो गुरु जी ने क्या कृपा की उनके ऊपर, कहते मूर्ख लोग आस्थान बनाने के लिए चमत्कार की आशा करते हैं, बिना चमत्कार के मूर्ख लोगों के मन में आस्थाओं का निर्माण नहीं होता है। पहले तो राजा सब कुछ त्याग करके भजन में लग रहा था, अपने रानियों का भी त्याग कर रहा था, अब देखा कि ममता वापिस आ रही है तो पिपाजी महाराज ने देख लिया, उनकी राजा की एक सबसे छोटी रानी थी और वो छोटी रानी बंध्या जो बांझ थी उसको कोई संतान नहीं थी और राजा उसके प्रति बड़ा आसक्त भी था। गुरुजी ने कहा जाओ उसको मेरे हमारे पास ले आओ, जानते थे कि राजा उसके प्रति बड़ा आसक्त है। अब गुरुजी ने आज्ञा की ये क्या करे, लाना तो पड़ेगा। तो क्या देखते जब रास्ते में से जा रहे तो बड़ा सा शेर मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। अब शेर का भय लग रहा है, क्या करे, आगे जाए पीछे आए तो गुरु की आज्ञा है, उन्होंने भी बोला है, क्या मुंह दिखाएंगे, आगे जाए कि क्या करे। उतने में ज्यों आगे बढ़ने गए तो क्या देखते हैं, उनकी छोटी रानी के गोद में एक सुंदर सा बालक खेल रहा है, अभी अभी जन्मा हुआ। जब उन्होंने घटना देखी तब आश्चर्य कर गए कि ये तो बांझ थी, इसको बालक कैसे हो गया। तब उस रानी को और बालक को लेकर गुरु जी के पास आए, आके दंडवत प्रणाम किया, कहते महाराज हमने आपके प्रति बड़ी कुबुद्धि की, बड़ा अभाव किया, आपके धर्म पत्नी के प्रति बड़ा अभाव किया हमने, तो हमको माफ कर दीजिए क्योंकि उन्होंने सीता सहचरी जी के चरणों में अपराध किया, ऐसा बोल के कि भाई उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, गुरु जी के चरणों में अपराध किया। लेकिन पिपा जी ने सोचा कि ये संसार के लोग जब चमत्कार देखेंगे ना तब गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत करेंगे, सामान्य रूप में नहीं करेंगे क्योंकि इनको विशेष स्पर्श कर गए अभी। तो सिंह के दर्शन क्यों हुए, कहते अहंकार रूपी हाथी जब मतवाला हो जाता है ना तो उसको हरण कंट्रोल में नहीं करता, उसको सिंह कंट्रोल में करता है, इसलिए राजा के इस अहम को पिपाजी महाराज ने कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल करके फिर चमत्कार दिखा के उनको एक बालक दिया और तब उनकी अक्कल ठिकाने आई और फिर बाद में उनके चरणों में गिर गए, कहते महाराज मैं भटक गया था, लोगों के कहने पे आ गया था, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि गुरु चरणों में अपराध करके मैं ज्यादा देर तक संसार में सुखी नहीं रह सकता, ना भक्ति प्राप्त कर सकता हूं। तो बार बार गुरु जी के चरणों में जब उन्होंने माफी मांगी ना तब पिपाजी महाराज ने उनको माफ कर दिया। और पिपाजी महाराज सोचे कि अभी हम बहुत रह लिए लेकिन अभी हम आगे प्रस्थान करेंगे, उसने रोकने का प्रयास किया लेकिन पिपाजी महाराज नहीं रुके, फिर अपने धर्म पत्नी को लेकर आगे प्रस्थान किए। तो आगे की ओर यात्रा कर रहे थे तो कुछ साधु संतों को देख के वहां रुके, ये साधुओं के मन की पढ़ लेते थे, सेवा करने का भाव था, इसलिए उस दिन साधुओं को दही खाने का मन था, उन्होंने सोचा हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, दही कैसे खिलाए इनको। तो उतने में एक दही बेचने वाली आई, इन्होंने उससे कहा कि आप हमको दही देंगे, कहते ठीक है लीजिए। कहते लेकिन हमारे पास देने के लिए मूल्य नहीं है कोई। वो थोड़ी कतरा गई, लेकिन हम आपको एक वचन देते हैं, आज हमको भिक्षा में जो भी मिलेगा ना वो दही के मूल्य के रूप में आपको दे देंगे, और अगर कुछ ना मिला तो दही आपकी सेवा में हो जाएगी। ठीक है, वो मान गए, ठीक है चलेगा। अपीपा जी महाराज ने क्या किया, दही सारे संतों को खिलाया, संत लोग दही खा के खूब प्रसन्न हो गए। अभी व्यवस्था तो कोई है नहीं, उतने में एक धनी व्यक्ति ने आके पीपा जी को कुछ धन चढ़ाया, लेकिन वो धन क्या था, सुंदर सी मोतियों की मालाएं चढ़ाई बहुत सारी। पीपा जी ने सोचा कि नियम के अनुसार तो हमको सब उसको दे देना चाहिए, क्योंकि हमने वचन दिया था। उसको बुलाया और पूरा का पूरा उसको पकड़ा दिया, तुम्हारे दही के बदले में, क्योंकि हमने वचन दिया था तुमको। इन्होंने सोचा इतने सच्चे संत है, एक दही के बदले में इतना कुछ देते हैं, तो इस संतों से ये लेने की क्या आवश्यकता है, इस संतों से तो आशीर्वाद ही ना ले ले, हरि भक्ति ना कर सीख ले इनसे। उन्होंने कहा महाराज ये भी आप किसी साधुओं की सेवा में लगा देना, हमको तो दही के बदले में आशीर्वाद दो कि हमारी भक्ति हो जाए। तो इस प्रकार पीपा जी महाराज ने उनको भी भक्ति का दान किया। तो संतों के संपर्क में कोई कैसे भी आता है उसका निश्चित भलाई होता है। पीपा जी महाराज आराम से बैठकर एक दिन भजन कर रहे हैं, उतने में एक तेल बेचने वाली बाई जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, तेल ले लो, तेल ले लो, तेल ले लो, बस पूरा दिन भर यही बोलती रहती है। पीपा जी उसको देख के बड़े दुखी हो गए, इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है और इसी शरीर में प्रभु भजन हो सकता है, और ये कर क्या रही है, पूरा दिन भर तेल ले लो, तेल ले लो, सारा मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। बुलाया, कहते बहन ये तेल ले लो बोलते उसकी बजाय सीताराम बोलो, राम राम बोलो। कहते ऐसा कौन बोलता है, वो तो विधवा नारियां बोलती है, या तो कोई मुर्दा लेके जब जा रहे होते तब बोलते राम नाम, अभी तू क्यों बोलता है ऐसा, बाबा जी पागल हो गए हो तुम। उसने झुंझला कर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब क्या हुआ, वो तो बड़ी दया करके चाहते थे कि भाई भगवत नाम में लग जाओ, लेकिन वो लगी नहीं। अब क्या हुआ, देव संयोग से जब घर वापिस आई ना, उसका पति मर गया था उसी दिन। आके खूब जोर जोर से चिल्लाने की, हाय राम ये क्या हो गया, अब जोर जोर से चिल्ला रही है। अब उसकी सब यात्रा उठाई और माथा पीटती हुई, हाय राम क्या हो गया, ऐसा माथा पीटती हुई जा रही है, और वहीं रास्ते से जा रहे वहीं पीपा जी भी बैठे हुए भजन कर रहे हैं। पीपा जी देख रहे हैं, कहते जीव सुखी सुखी प्रभु भजन नहीं करता, जब सब कुछ लूट जाता है तब हाय राम करता है, पहले भी हरी भजन कर सकता था। अब ये नारी पीपा जी के प्रति देखकर खूब दुखी है ना, अब पीपा जी के सामने देखकर ऐसी भावना व्यक्त कर रही है, आप ही ने बोला था ना इसलिए हमारा पति मर गया, आप ही के कारण सब कुछ ये हुआ है। अब ये पीपा जी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। उनको दया आ गई कि बहुत दुखी है बिचारी। उन्होंने सब यात्रा रुकवाई, उस भाई के माथे पे हाथ फेरा, भाई राम राम भाई उठ जाओ, उसको उठाया और दोनों को सीताराम का उपदेश दिया। कहते मनुष्य जीवन मिला है हरि भजन करने के लिए मिला है, उसको संसार के ऐसे सामान्य कार्यों में बर्बाद मत करो। शरीर का निर्वाह तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन प्रभु भजन छोड़ के शरीर का निर्वाह कर लिया तो क्या किया जीवन में। शरीर का निर्वाह करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके लिए प्रभु भजन का त्याग तो नहीं कर सकते, भगवान को छोड़कर तो शरीर निर्वाह नहीं कर सकते। तब उनको शिक्षा दी, और उनके शिक्षा से क्या हुआ, वो दोनों पति पत्नी भक्त बन गए। तो पीपा जी महाराज ने अनेक चमत्कार दिखाए थे। एक दिन संतों ने उनको आमंत्रण दिया, महाराज हमारे वहां पर आइएगा, ऐसे 5 गांव के संत आमंत्रण दे गए कि महाराज हमारे वहां आइएगा। कहते ठीक है। अब जब जाने निकले ना, उनके घर भी संत आके बैठ गए। अब क्या करें, अब उनको छोड़कर तो जा नहीं सकते। अब संत घर पे, वहां भी संतों ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, कहते पिपा जी बड़े अहंकारी हो गए, आए नहीं। अब क्या किया उन्होंने, घर में जो संत थे ना उनकी खूब सेवा की और वहां लाज बचाने के लिए अपने 5 रूप बनाए और 5 गांव में अलग अलग चले गए और वहां संतों की बिरादरी में बैठे भी, वहां उनके साथ सत्संग किया, प्रसाद आदि लिया और वो 5 के 5 रूपों में वहां पर उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। अब पिपाजी महाराज चले गए, पिपाजी महाराज चले गए करके हर एक गांव में ऐसा कोलाहल हो गया और पिपाजी महाराज का वहां दाह संस्कार भी होने लग पड़ा। तो एक गांव में पिपाजी की 2 शिष्या रहती थी, उन्होंने देखा कि पिपाजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, उनका दाह संस्कार भी हो रहा है। फिर वो वहां से दूसरे गांव में आए तो वहां देखती यहां भी पिपाजी महाराज मर गए और यहां भी दाह संस्कार हो रहा है। उसको आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता है। तब उसने गांव वालों को बताया, तब जब सब गांव वाले मिले कहते हमारे वहां भी तो पिपाजी आए थे। अब 5ों कहते हमारे वहां आए थे और 5ों ये भी कहते हमारे यहां शरीर भी छोड़ दिया, ये कैसे संभव है। अभी क्या हुआ, कहते पिपाजी महाराज जहां है वहीं चलते हैं, वहां है तो यहां तो पिपाजी महाराज साधुओं की सेवा कर रहे हैं। तब उन 5 गांव के लोगों की श्रद्धा पिपाजी में इतनी बढ़ गई कि आप ऐसे महान वैष्णव है कि साधुओं को दिया वचन भी रख लेते हैं, साधुओं की सेवा भी कर लेते हैं और फिर भी हृदय में लेश मात्र भी आपको कोई अहम नहीं है, ऐसा आपका भाव है। पिपाजी महाराज जी के पास एक साधु मंडली आई, कहते महाराज हमको द्वारिका जाना है लेकिन हमारे पास कोई धन नहीं है, कुछ धन दिलाओगे क्या। कहते भाई धन तो हमारे पास भी नहीं है लेकिन अगर आपने इच्छा व्यक्त की है हम कुछ प्रयास करते हैं, साधु द्वारिका जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, रास्ते में कुछ दान दक्षिणा पुण्य करते जाएंगे, तो हम प्रयास करते हैं इसके लिए। साधुओं को भी जब कभी धन दिया जाता है और वो आगे दान दक्षिणा करते हैं ना तो उसका फल देने वाले व्यक्ति को भी लग जाता है, इसलिए कभी कभी किसी को सही सेवा करने का कोई समझ नहीं होता ना तो वो क्या करता है किसी साधु को जाके या किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को जाके धन देता है। कहते आपको जो भक्ति के लिए उचित लगता हो ना ऐसी किसी जगह पर उसका उपयोग कर देना, हमको नहीं समझेगा लेकिन आपको समझता है तो आप कर देना। अब पिपाजी महाराज कहे कि हम किसी को जाके निवेदन करते अगर कोई दे दे तो अच्छी बात है। ये एक सेठ के पास गए, कहते साधु संतों को द्वारिका जाना है उनके पास कुछ द्रव्य नहीं है, आप कुछ द्रव्य हमको देंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, सेठ जी ने दे दिया या कागज पर लिख दिया, हस्ताक्षर हो गए। लेकिन पिपाजी महाराज ने कंडीशन क्या लिखवाई, ये धन जो आपने दिया है इसको आपने सामने से आके मांगना नहीं, हमारे पास जब आएगा ना उसी समय आपको लौटा देंगे, लेकिन आपने सामने से मांगना नहीं, ये तय रहा, ये वचन दीजिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं, आप रोज रोज मांगने आएंगे तो हम कहां से लाके देंगे, लेकिन हमारे पास आएगा तो हम विलंब नहीं करेंगे, तुरंत आपको दे देंगे। अभी ये जो सेठ था ना उसने कुछ दिन तो राह देख ली, लगा पीपा जी के पास तो कभी नहीं आया तो फिर तो कभी नहीं देंगे वो, तो फिर बड़ी हिम्मत करके एक दिन मांगा, कहते महाराज वो धन तो दो। कहते भाई हमने आपसे कही थी पहले मांगना नहीं, जब आएगा तो दे देंगे। हाँ तो उसने पहली बार मान लिया ठीक है, दूसरी बार बोला, दूसरी बार भी पिपाजी ने यही जवाब दिया। जब तीसरी बार बोला तो बड़ा गुस्सा खा गया, एक तो हमारा धन लिए हो और ऊपर से वचन भी याद दिलाते हो कि जब आएगा तब देंगे, हमारी शर्त हुई ऐसे। उसने तो पंचायत इकट्ठी कर ली और पंचायत इकट्ठी करके बोला इन्होंने हमारे से धन लिया है और अभी मांग रहे तो दे नहीं रहे। पिपाजी ने कहा कि हमने आपसे धन लिया उसका आपके पास कोई प्रमाण। कहते है हमारे पास प्रमाण। कहते पंचायत में प्रमाण ले आइए। अब पंचायत में प्रमाण लाए दिखाया तो कागज पूरा कोरा खाली। वो कह रहा इसी में ही लिखा था। पिपाजी कहते दिखाओ इसमें लिखा था दिखाओ। अब पंचायत कहती है कि भाई तू पिपाजी को परेशान कर रहा है, हाँ तू उनसे पैसे हथियाना चाहता है। पंचायत ने उसको खूब डांट फटकार लगाई। जब डांट फटकार लगे उसके बाद पिपाजी क्या बोलते हैं, ये बात सत्य है कि मैंने इनसे धन लिया था और इसी कागज में लिखा था, वो हमारे साइन भी थे, लेकिन एक कंडीशन भी थी कि वो हमसे मांगेंगे नहीं, जब हमारे पास आएगा तब हम दे देंगे, ये उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने अपने वचन का भंग किया ना, भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने कागज ही मिटा दिया पूरा। तब उस व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को समझ में आया कि इनके लिए तो भगवान ने कागज में लिखावट ही मिटा दी, तो ऐसे व्यक्ति से हमने जबरदस्ती धन वापस लेने का जो ये हमने ये आग्रह किया ना, वो तो आग्रह ठीक नहीं है, ये हमको नहीं करना चाहिए था। ऐसा कह के उन्होंने कहा, महाराज वो धन साधु ले गए थे, अब छोड़ो उसको, साधु जहाँ सेवा में लगाएंगे ठीक है, हमने वापस नहीं लेना आपसे। हाँ, और पिपाजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके निकल गए वहाँ से। तो महान वैष्णव जो होते हैं वो तो संसार में जीवों को कहीं ना कहीं कुछ लाभ ही पहुँचाते हैं, उनसे कुछ लेते भी है ना तो भी उनका भला ही करते हैं, उनका कभी नुकसान नहीं करते, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, इसलिए हमेशा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को लाभ ही मिलता है। पिपाजी महाराज जी के मन में आया कि श्री रंग जी यहाँ पर है, उनके दर्शन कर आते हैं, मिल आते हैं, वो भी इच्छा करते थे बड़ी। अब रंग जी के वहाँ है तो रंग जी क्या कर रहे थे, मानसी सेवा पूजा कर रहे थे। पिपाजी ने देखा मानसी सेवा पूजा कर रहे, बाहर बैठ गए। अभी मानसी सेवा पूजा में क्या कर रहे, भगवान को मुकुट आदि सब पहना दिया, फूलों की माला पहनाने जा रहे तो फूलों की माला पहना नहीं पा रहे, अब बार बार यत्न कर रहे मानसी सेवा में, फूल नहीं है वहां, कोई विग्रह भी नहीं है, बस मानसी सेवा में हो रहा है। तो पिपाजी महाराज ने बाहर से कहा कि वो जो धागा है ना उसकी गांठ खोल दो और फिर पहना तो हो जाएगा। उन्होंने मानसी सेवा में पहना भी दिया और फिर बाद में याद आया ये मानसी सेवा में प्रवेश करके मुझे किसी ने ऐसा सुझाव कैसे दिया। झट आंखें खोली, इधर उधर देखा तो कोई नहीं, द्वार के बाहर जाके देखा तो पिपाजी बैठे हुए, जाके कहा था, आप कौन? वो पिपाजी महाराज आप? कहते आप हमारे मन के अंदर प्रवेश किए, हम जहाँ सेवा कर रहे थे वहां भी आ गए और हमको वहां मार्गदर्शन भी दिए। ओ दंडवत प्रणाम महाराज, दंडवत प्रणाम, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। तो पिपाजी महाराज ने उनको मार्गदर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है उनकी शिक्षा दी। वास्तव में उन पिपाजी जी के हृदय में अहम नहीं था, लेकिन वो शिक्षा देना चाहते थे कि मार्गदर्शन लेने के लिए व्यक्ति का भाव कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मार्गदर्शन ऐसे लिया जाता है, मार्गदर्शन लेने की विधि भगवान ने गीता में बताई है, पहले साधुओं की सेवा करो विनम्र भाव से, उनको प्रसन्न करो, फिर उनसे जिज्ञासा करो और वो जो उपदेश देंगे उसे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सीधे बस लाओ सीधा मार्गदर्शन, ऐसे मार्गदर्शन होता है? कहते महाराज मेरी सेवा करने की भी चाव थी, लेकिन आप तो घर के द्वार तक आ गए, अगर मेरे को पहले पता होता ना तो मैं 2 कोस दूर से पालकी लेने आता आपको और आपको पालकी में बिठाता, खूब बाजे गाजे के साथ दान दक्षिणा करता हुआ आपको ले आता। पिपाजी कहते छोड़ो अब यहाँ आ ही गए। कहते महाराज लेकिन जीवन भर मेरी तो मन में ही रह जाएगी ना, कैसे महान वैष्णव आए और मैंने उनका कुछ नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मेरी मन में ना रहे, बस मेरी खातिर आप एक काम करो। पिपाजी को 2 कोस दूर भेज दिया और वहाँ बगीचे में बिठाया और यहाँ से बहुत सारे लोगों को पालकी के साथ लेकर गया, खूब नाबाना बजाते हुए, और पिपाजी महाराज जी को बोला आप इसमें बैठिए। कहते पालकी में तो हमारे गुरु रामानंदाचार्य जी बैठ के जाते थे, हाँ इसलिए हम नहीं बैठ सकते, हम पैदल चलेंगे। कहते ठीक है फिर गुरु जी को, गुरु जी के चित्रपट को बिठा दीजिए। रामानंदाचार्य जी के चित्रपट को बिठाया और सब पैदल पैदल आ रहे, खूब कीर्तन करते हुए, और श्री रंग जी खूब सब लोगों को दान दक्षिणा बांट रहे पिपाजी महाराज जी के आगमन पर, और बड़े प्रेम से उनको घर ले गए और उनकी खूब सेवा की उन्होंने। और फिर बाद में उनसे भक्ति संबंधित प्रश्नों की जिज्ञासाएं की और उनसे उपदेश प्राप्त किए। तो ऐसे पिपाजी महाराज जैसा जैसा व्यक्ति है वैसे वैसे उसको उपदेश करते थे। कोई बेचारा बड़ा दुखी है तो उसको कुछ ऐसी मदद कर देते थे, किसी को भक्ति की वास्तव में कहीं आवश्यकता हो तो उसको भक्ति की मदद कर देते थे। यही उनकी महानता थी। एक ब्राह्मण उनके पास आया, रंग जी के वहां से जब विदा हुए तो ब्राह्मण आ गया रास्ते में, कहते महाराज हमने आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ी कृपा है आपकी, मेरी बेटी का विवाह होने वाला है लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं कैसे उसका विवाह करूं। पिपा जी कहते भाई हमारे पास भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ब्राह्मण इतना दुखी कहते भाई तू दुखी मत, हम कुछ करते तेरे लिए, प्रयास करते। थोड़ा समय विचार करने के बाद उन्होंने कहा हम एक प्रयास करते हैं, तुम साधु बन जाओगे। अब जिसकी बेटी का विवाह करना बाकी है उसको पिपा जी कहते तुम साधु बन जाओगे तो बात बन सकती है। कहते महाराज मैं मत समझा नहीं। कहते तुमने ना झूठ मूठ साधु का वेश बनाना है तो मैं कुछ मदद करा सकता हूं तुम्हारी। कहते महाराज बेटी का विवाह करना है, चलो बन जाते हैं। पिपा जी ने उनका सर मुंडन कर दिया, तिलक लगा दिया, कंठी माला पहना दी, धोती वगैरह सब पहना के और जहां पर वो रुके थे वहां ले गए, टोंडे गांव में ले गए। और वहां पर क्या किया, उनको आसन पे बिठाया और पिपा जी महाराज नीचे बैठ गए। अब उतने में लोग आके देखे भी पिपा जी के वहां को साधु आए, पिपा जी नीचे बैठे उनको ऊपर बिठाया, समाचार मिल गया राजा सूर्यसेन मल जी को। कहते अच्छा फिर तो हमको भी चलना चाहिए उनके दर्शन करने, राजा भी आ गए दर्शन करने के लिए। कहते पिपा जी कौन है, ये हमारे काका गुरु है। अच्छा आपके काका गुरु आए, ओ खूब प्रचुर मात्रा में उनको धन संपत्ति दी। अरे सेवा करो, पिपा जी जिनके चरणों में बैठते सेवा करो, खूब खूब सेवा कराई। सब लोग चले गए, पिपा जी ने कहा भाई ये धन संपत्ति लो, अभी साधु का वेश उतार के बाल थोड़े दिन में आ जाएंगे, इतना हमको माफ कर देना, हमने तुम्हारा मुंडन कर दिया लेकिन इसके लिए हमको माफ कर देना, ये सब लेके जाओ अपनी बेटी का विवाह कर देना। अब साधु सोचे झूठ मूठ साधु बन गए, वो जो ब्राह्मण था वो सोचे मैं झूठ मूठ का ब्राह्मण बन गया तो ये अवस्था है, सचमुच का ब्राह्मण बन गया होता तो क्या हो जा, सचमुच का साधु बन गया होता तो क्या हो जाता था। उन्होंने इसी वेश में, कहते ये वेश मेरे को पिपा जी ने दिया है, इसी वेश में बेटी का विवाह करवाया और जितनी भी धन संपत्ति थी बेटी के विवाह में लगाई, जो बची हुई थी साधु संतों में लगाई और पुनः विवाह कराने के बाद तुरंत पिपा जी के पास आए। कहते महाराज झूठ मूठ साधु का वेश बनाया तो भी भगवान जगत के काम निकाल देते हैं, अगर सचमुच का वेश बनाएंगे तो क्या भगवान परमात्म के काम नहीं निकालेंगे फिर। कहते महाराज अभी ये वैष्णव वेश आपने बनाया था ये अभी कभी नहीं त्यागना, आपके शरण में रहेंगे यहीं पर आपके साथ भजन किया करेंगे। और फिर पिपा जी के शरण में आ गए और भजन करने लगे। तो इस प्रकार से पिपा जी महाराज ने अनेक जीवों के ऊपर कल्याण किया है। राजा सूर्यसेन मल जी के वहां पर वो जब रहते थे ना तो भयंकर काल पड़ गया। अब लाख यत्न करने के बावजूद भी अकाल की परिस्थिति में उस प्रांत में कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा जब कोई उपाय ना मिले तो जीव को गुरु के पास जाना चाहिए। एक भजन में वर्णन आता है ना कि सुनाना और किसी को ना, अभी तो गुरु जी को सुना देना। कहते जीवन में अगर हम किसी को कुछ नहीं भी कह सकते वो गुरु जी को कहना चाहिए, समस्या का समाधान कहते उनके चरणों में जाके कहना चाहिए। उनकी बड़ी श्रद्धा थी, पिपा जी में आ गए। कहते महाराज लोग बहुत तड़प रहे हैं, बड़ा दुखी है लोग, कुछ दया करो इनके ऊपर। पिपा जी ने अपनी योग शक्ति से क्या देख लिया, उस प्रांत में जमीन के अंदर जो जो खजाने गड़े हुए थे, देखो वैष्णव ऐसे चलते हुए जा रहे, कभी कोई कहता है एक रुपया दो, कहते भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, किसी से मांग के दिलाते हैं। लेकिन जहां जहां जमीन में खजाने गड़े थे ना, पुराने समय में लॉकर मतलब जमीन, खड्डा खोद के निशानी बना के डाल देने का, उसी निशानी पर अटका के रखने का कि हाँ हमने धन रखा है। और कोई अलग से तो लॉकर थे नहीं, तो पीपाजी महाराज ने अपने योग बल की शक्ति से सारे छुपे हुए जो जमीन में खजाने थे, जो धन था ना, वो सब देख लिया और जगह जगह सबको ले जाके बोले यहाँ खोदो यहाँ खोदो, और बाहर निकाल दिया सारा धन। और राजा को बोला ये प्रजा में बांटो और प्रजा का भला करो, तो उन्होंने पूरे राज्य का भला किया पीपाजी महाराज जी ने। तो ऐसे संत लोगों का हृदय कितना स्थिर होता है, सब कुछ देख रहे होते हैं, धन भी कहाँ रखा है वो भी देख रहे होते, भगवान के दर्शन कर रहे होते, अपने अलग रूप भी बना सकते होते, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसा रखते हैं, जैसे एक निष्किंचन वैरागी होता है, जैसा कुछ के पास कुछ नहीं है, फक्कड़ सा व्यक्ति, भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति, सतत हरि भजन करने में लगा हो, ऐसा अपने आप को रखते हैं, यही तो वैष्णव की पहचान है। कि वो कभी अचानक से वस्तुएं मिल जाती है तो अधीर नहीं हो जाते, थोड़ी है वो भी भगवान की सेवा में, ज्यादा आ जाए वो भी भगवान की सेवा में, कोई कमी नहीं। नहीं आए तो भी ठीक है, आ जाए तो भी ठीक है, ऐसा उनका भाव रहता है। अन्यथा अगर व्यक्ति के पास भौतिक पदार्थ आए और मन चंचल ना हो, ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति के पास इतनी शक्तियां हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी वो स्थिर बनकर भजन कर रहे, वो स्थिर तभी रह सकते हैं जब ये सारे पदार्थों के ऊपर, ये मान प्रतिष्ठा के ऊपर, जब अनंत अनंत गुना श्रेष्ठ भगवान जब उनको मिल जाए, तब उनको सारी चीजें कैसी लगती है, एक तुच्छ की तरह लगती है, सारहीन लगती है। इसलिए महान महान राजा लोग अपना संपूर्ण ऐश्वर्य त्याग सकते हैं प्रभु भजन करने के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवत चरणों का आनंद इतनी मात्रा में मिला है ना कि वो त्यागने में कष्ट नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति बिस्किट ले और बिस्किट खा के उसके ऊपर का कवर फेंकने में कष्ट महसूस करता है, इसी प्रकार ये लोग जब प्रभु भजन को प्राप्त करते हैं तो संसार का ये जो ऊपर का जो कवर है ना, उसको छोड़ने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती, वो दुखी दुखी नहीं छोड़ते, उनका मन ही नहीं लगता वहां। लेकिन एक भिखारी प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, जैसे वो भंगार बेचने वाला होता है, कबाड़ी होता है, वो उस बिस्किट के ऊपर का जो कवर होता है ना, उसको भी ले लेता है, ये भी मेरे किसी काम आ जाएगा, वो उसमें भी मन अटका के रखता है। तो इसीलिए संसार में ये संसार तुच्छ है, मलवत है, साधुओं की दृष्टि में तो यहां सब कचरा ही कचरा है, कोई काम की चीज नहीं है साधुओं की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन हम सब लोग कबाड़ी वाले हैं, इसलिए हम सब लोगों को यहां सब काम का ही लगता है, इसलिए जो मिलता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं भंगार वाले सब। साधु सब छोड़ते हैं, उनको कुछ काम का नहीं लगता, ये तो माया का बना लगता है उनको, लेकिन हम लोगों को वो मूल्यवान लगता है, क्योंकि हमारी सोची उतनी छोटी है। जैसे गंदगी में से भी कबाड़ी को 2 रुपए की कोई चीज मिल जाती है वो ढूंढ भी लेता है, क्योंकि उसकी नजर ही वहां पड़ी होती है। इसी प्रकार हमारी नजर संसार के इस गंदगी में पड़ी है, इसलिए हम भी वो ढूंढ लेते हैं और उसको इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन संत लोग उसमें मन नहीं लगाते कभी, उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा होता है। तो पीपाजी महाराज जी का अद्भुत चरित्र जिसमें बड़ी शिक्षाएं है, श्री पीपाजी महाराज की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय।